اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کا اگلا سیشن شروع کریں گے. اس سے پیچھے ہم نے جس چیز کو دیکھا وہ تھا مواخات مدینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کیے. تین بڑے کام کیے. ایک بولیں سب, مسجد نبوی کی تعمیر, دوسرا انصار اور مہاجرین کے بیچ میں بھائی چارہ, اور تیسرا میثاق مدینہ. مقصد کیا تھا ان سب چیزوں کا؟ منظم کرنا. ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے؟ طریقے سے کام کریں, یعنی کاموں کو آرگنائز کرنا, وقت سے پہلے چیزوں کے لیے تیار رہنا. ٹھیک ہے, آج اب ہم دیکھیں گے کہ کیا مدینہ آ کر مسلمانوں کو چین مل گیا. یعنی جو مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان کو ایک پرسکون ماحول مل جائے گا اور کوئی ان کو ستائے گا نہیں, کیا ہو گیا؟ تو آج ہم پیج 180 سے دیکھیں گے بک میں, قریش کی فتنہ خیزیاں. آپ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ حالات آپ کی اور میری مرضی کے نہیں رہیں گے. یہ بنیادی چند باتیں سمجھ لیں, پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے. ہم ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دن اچھے آئیں, لیکن لکھ لیجئے ہمارے دن بدلتے تو رہیں گے, لیکن ہمیشہ 110% حالات ہماری مرضی کے نہیں ہوں گے. گرمی میں سردی چاہیے, آ جائے گی سردی. اگر گرمی میں گرمی لگتی ہے نا, سردی آ جاتی ہے, لیکن پھر سردی لگنے لگ جاتی ہے. رات لمبی ہے, رات لمبی ہے, رات لمبی ہے, تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, پھر بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. بچپن میں ہم کہتے ہیں ذرا سے بڑے ہو جائیں نا زندگی آسان ہو جائیں گی, ہر بات پوچھنی پڑتی ہے ماں باپ سے. پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں. شادی سے پہلے لڑکیاں ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں, کہتی ہیں بہت ساری پابندیاں, بہت مسئلے ہیں, ہر بات پہ روک ٹوک, اپنا گھر ہوگا, شادی ہوگی, بہت اچھا. شادی ہوتی ہے وہ پابندی ختم, لیکن اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اکیلی زندگی ہوتی ہے, پھر شوہر آ جاتے ہیں بیچ میں, ان کی ذمہ داریاں. بچے نہیں, بچے نہیں, بچے نہیں, ہائے بچہ, ہائے بچہ, ہائے بچہ. پھر بچہ آ جاتا ہے تو کام ہی کام, مسئلے ہی مسئلے, رونا دھونا ہی پڑا رہتا ہے گھروں میں ہر وقت. یاد رکھیے اس دنیا میں ہر کام میری مرضی کا نہیں ہوگا, یہ کام جنت میں جا کے ہوگا. لہم فی ہما یشتہون. اللہ نے جنت کو ایک ایسا مقام دے دیا ہے کہ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. رادیتم مردیا, تم بھی راضی, رب بھی راضی. لیکن یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ شعر ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہماری مرضی کے حالات ہوں. کام وہی کرے گا جو ہر حال میں کام کرے گا. پچھلے سیشن میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, ہمیشہ وہی لوگ کام کرتے ہیں جو حالات سے اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ سب اپنی زندگی میں دیکھیں, اس وقت میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مختلف حالات والے ہیں. کوئی ینگ بچیاں, کوئی مائیں, کوئی چھوٹے بچوں والی, کوئی بڑوں والی, کوئی بوڑھی خاتون. آپ سب اگر بیٹھیں گے نا اکیلے میں, کوئی آپ سے پوچھے سنائیں آپ کے حالات کیسے ہیں, تو آپ کہیں گے دل بڑا چاہتا ہے لیکن اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ ینگ بچیاں اچھی ہیں, یہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں کلاس سے. آپ ینگ بچیوں سے پوچھے, وہ کہیں گے ہم دیکھیں یہاں بھی آتے ہیں, پھر ہمیں اسکول کالج بھی جانا پڑتا ہے. دیکھیں آنٹیز کتنی اچھی ہیں کہ ان کو اسکول نہیں جانا پڑتا. ہاؤس وائف سے پوچھیں سنائیں آپ کا کیا حال ہے, وہ کہتی ہیں کہ گھر کے کام ہی اتنے, بچے اور سارے, پھر آ کے ہم ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. جاب والوں سے پوچھے, وہ کہتے ہیں ہم تو ساتھ جاب بھی کرتے ہیں, یہ اچھے ہیں صرف گھر میں رہتے ہیں. ہمیشہ آپ کو دوسرا بندہ ایسے لگے گا صحیح حالات کا ہے. تو اگر پوچھا جائے تو پھر میرے اور آپ میں سے کسی کے حالات ہے ہی نہیں دین کا کام کرنے والے, اور نہ ساری زندگی بنیں گے. یاد رہے, اور اللہ نہ کرے کہ اللہ میں ہر چیزوں سے خالی کر کے بالکل بے یار و مددگار تنخواہ چھوڑ دے کہ جاب میرے کام کرو. وہی کام کرے گا جو اس دنیا میں رہ کے کام کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کشتی میں بیٹھو, کہتے ہیں طوفان کا ڈر ہے. اونٹ پہ بیٹھو, کہتے ہیں کوہان کا ڈر ہے. بھئی طوفان تو آئے گا, کوہان تو ہوگی. یہ زندگی آئیڈیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سوچا کیا تھا کہ مکہ سے نکل کر ہمیں سکون ملے گا. آپ نے یہاں آ کر معاملات کو مرتب کیا, آرڈر میں رکھا, پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے. مطلب کیا کہ تھنگس ٹو ڈو بنائی, پہلے کیا کام, امپورٹنٹ کون سے, لیس امپورٹنٹ, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट का फ़र्क, और नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट के वक्त को अल्लाह के नबी ने मुरतब किया, तरतीब दिखाई, ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों की तंजीम की, लोगों को सेटल डाउन कर रहे थे और ख्याल किया था कि सबको उनकी जगहों पर काम पर लगा कि मैं दावत अल्लाह पर लग जाऊँगा। लेकिन ये हुआ नहीं। आपका जो ख्याल था कि यहाँ कोई कश्मकश नहीं, कोई टकराव नहीं है, तो ये ना हुआ। कुरैश जिनके हाथों से तर निवाले निकल गए थे, वो तो बिफरे हुए थे। आप देखें ना, किसी के हाथ से उसका कोई कैदी भाग जाए, कितना गुस्सा आएगा। लिहाजा वो वहाँ बैठ के खून के घूंट पी रहे थे कि अब हम मुसलमानों को कैसे ख़त्म करें। चुनाचे मुशरिकीन ने कुछ तदबीरें अख्तियार की मक्का में बैठे हुए, और वो क्या थी कि मक्का में रहने वाले मुशरिकीन जो कि मोस्टली कुरैश से थे, उन्होंने मदीना के उन लोगों को, जिसको अभी शुरू में मैंने आपको तीन गिरोहों में बता दिया जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको ख़त लिखा। और इनमें से याद रखिए कि सबसे बड़ा इनका जो लीडर था ना, उसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था। इन्होंने उनको लिखा कि देखो, ये हमारे कैदी भाग के तुम्हारे पास आ गए हैं, लिहाजा तुम इनको छोड़कर इनको वापस करो, और अगर तुमने इनको वापस ना किया तो हम तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देंगे और औरतों को कैदी बना लेंगे। यानी मक्का में बैठे धमकियां दे रहे हैं कि इनको अपने मुल्क से निकाल दो। ये ऐसी है कि जैसे किसी दूसरे मुल्क में कुछ मुसलमान हो और उनको लोग सताना चाहें इस तरह से कि आप इनको छोड़ दीजिए और ये करेंगे वो करेंगे। आज दुनिया में भी तो कई ऐसे नॉन मुस्लिम मुल्क हैं ना, अपने मुल्कों में बैठे हुए मुसलमान मुल्कों पर हुक्म चला रहे होते हैं, उसको रखो, उसको बनाओ, उसको हुक्मरान बनाओ, उसको गवर्नमेंट दे दो, उसको दे दो, कुछ इसी किस्म के हालात थे। चुनाचे मुसलमानों के खिलाफ मदीना में भी कुछ साजिशें शुरू हो गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात का पता चला, लेकिन आपने टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, जाके बातचीत की, थोड़ी नसीहत की, सब समझ गए। यहाँ आप देखिए अल्लाह के नबी का किरदार। अभी तक 13 साल जिंदगी आपने अल्लाह के नबी की पढ़ी। अगर मैं सीरत को यहाँ ख़त्म कर दूँ कि बस अभी हम मक्की दौर ही पढ़ेंगे, आप बताइए कि अल्लाह के नबी के बारे में आपका कोई इमेज बना? टेररिस्ट का, लड़ाके थे, खूनी थे नाउज़ुबिल्ला, तलवारें चलाते थे, जुल्म किया, बेटे मरवाए, जितने इल्ज़ाम आज लोग लगाते हैं, क्या आप सच बताएं अल्लाह के नबी का ये रूप आपको दिख रहा है? हद तक यहाँ देखिए कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और आप जाके बात को ठंडा कराते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैन ऑफ पीस थे, आपको पीस अच्छा लगता था, लेकिन वो पीस नहीं जो अल्लाह के साथ शिर्क करवा के लोगों को रखा जाए। बहरहाल आपकी बीच में कोशिश से वो मामला ठंडा हो गया। इसी तरह एक और वाक़या हुआ उन्हीं दिनों में, और वो क्या था, साद बिन मास जो कबीला औस के सरदार थे, ये उम्रे के लिए मक्का गए। अब यहाँ समझ लीजिए कि मक्का जाना पूरे अरब की आदत थी, इस्लाम से पहले भी थी, पीछे बात बहुत डिटेल से हो गई है। कभी किसी ने हज या उम्रे के लिए जाने वाले को रोका नहीं था, ये उनकी रिवायात के खिलाफ था। जैसे आज हमारे यहाँ कह लीजिए कि किसी की दरगाह पे जाने वालों को लोग नहीं रोकते, उनको रोकना उनकी रिवायत नहीं थी। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इन्होंने मुसलमानों को पनाह देने के जुर्म में इनको भी रोका। अबू सुफवान उमैया के साथ जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, उनके दोस्त थे, अबू जहल से इनका सामना हो गया। उसने हजरत साद को धमकियां दी, कहने लगा अच्छा जी, मक्का में बड़े अमन के साथ घूम रहे हो और अपने यहाँ तुमने बेदीनों को पनाह दे रखी है। किनको कह रहे हैं बेदीन? मुसलमानों को, नबी सल्लम के साथियों को। सुनो, अल्लाह की कसम, अगर तुम अबू सुफवान के साथ ना होते तो अपने घर सलामत पलट कर ना जा सकते। ये मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोकने का ऐलान था, और इसका भी कि अगर वो कुरैश की हदूद में पाए गए तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। यानी हैरत की बात थी कि आज तक किसी को नहीं कहा उन्होंने इस तरह, लेकिन आज उन्होंने मुसलमानों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि अब तुम मक्का भी नहीं आ सकते हज और उमरे के लिए। इसी तरह कुरैश के ताल्लुकात यसरब के यहूद से भी बहुत अच्छे थे। यहूद, जैसा कि इंजील में हज़रत मसीह का एक कॉल है कि सांप और सांपों की औलाद थे। एक मुहावरा है कि सांप के बच्चे को जितना मर्जी आप दूध पिलाएं ना, जब बड़ा हो जाएगा ना तो आपको डस लेगा। तो गोया कि ये उनके किरदार पर एक चोट थी कि ये लोग कभी भी अपने मोहसिन को भी नहीं छोड़ते, उसको भी वक्त पड़ने पर नुकसान दे देते हैं। इसी तरह औस और खजरत जो दो कबीले थे मुशरिकीन के, उनके दरमियान में हमेशा यहूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते, उनके अंदर जो पुरानी दुश्मनियाँ थी उनका जिक्र करते रहते ताकि वो दोनों आपस में लड़ें। वो लड़ते, इनके हथियार बिकते और ये अपनी तिजारत चमकाते थे। गोया कि आप कह लीजिए कि मक्का में तो अल्लाह के नबी के बस एक ही दुश्मन थे ना, कुरैश मक्का। मदीना में आकर आपको चारों तरफ से खतरों ने घेर लिया। मक्का वाले तो दूर से आते ना मरने के लिए, यहाँ कह के घर में ही यहूद है, घर में ही औस कबीला है, उसी में खजरज है, और बीच में कई किस्म के लोग, कोई बदवी इलाकों के थे। इतना खौफ था उन दिनों में कि सहाबा कराम रात को हथियार लेकर सोते थे। वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, अल्लाह ताला सूरत बकरा में मसाइब हमसा का जिक्र करते हैं कि लोगों तुम्हें 5 किस्म के गम ज़रूर आके रहेंगे जिसमें एक खौफ है, हथियारों के साथ सुबह करते। हत्ता कि एक दिन अल्लाह के नबी इतने थके हुए थे कि आपने कहा कि कोई ऐसा बंदा है जो आज की रात मेरे घर का पहरा दे दे और मैं इत्मीनान से सो सकूं। और कहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि मैं आपका आज पहरा दूंगा, मैं अगर भूल नहीं रही तो, हज़रत ज़ुबैर ने कहा। तो आपने कहा कि अच्छा, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। इतना खौफ था, ज़रा सी कहीं से हथियार बजने की आवाज़ आती थी ना तो सहाबे कराम एकदम उठ के भाग जाते थे, दुश्मन दुश्मन खौफ लड़ाई ये हालात थे। आज हम ज़रा कहीं एयरपोर्ट पे किसी ने रोक लिया, मीडिया पे खबर आ गई, किसी को किसी ने स्काफ पे, किसी ने किसी मुस्लिम हुलिये पे रोका, तो बस हम घर बैठे कांप रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, काम फिर भी नहीं छोड़ा। इतना खौफ था कि लोग सो नहीं पाते थे, हत्ता के फिर सूरत मायदा की आयत 67 नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह के नबी, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के नबी का ईमान देखिए कितना ज़्यादा था अल्लाह के कलाम पर। उसके बाद फिर आपने कहा कि अब मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मुझे बचा लेगा। हमारा हाल यह है कि हम सेफ्टी लॉकर्स में चीज़ें रख के भी घबरा रहे होते हैं, घरों में हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लगाए हुए, फिर भी हमें खौफ होता है कि चोर ना आ जाए। जब बंदा अल्लाह के हवाले अपनी चीज़ों को कर दे तो फिर अल्लाह के हुक्म से ये सारा कुछ हो जाता है। ये वो हालात थे कि अब जब अल्लाह ताला ने पहली बार मुसलमानों को इजाज़त दी कि देखो 13 साल सब्र कर लिया, कुफ्फ अयदीकुम, हाथ रोके रखो, अब अगर कुरैश तुमसे लड़ें या अगर तुम्हें कहीं अंदेशा हो कि वो तुम्हारी तरफ भड़ें, तो अब इजाज़त है कि आप कुरैश से लड़ सकते हैं 13 साल के बाद। और उसमें भी इतनी खूबसूरत तरीके से तरबियत की गई कि ज्याती ना करना। हम सूरत बकरा में जब तफसीर करेंगे इंशाल्लाह आप खुद पढ़ेंगे आते हैं कि किस तरह कहा गया कि देखो तुमने ज्याती नहीं करना। हाँ, उज़ीना लिल्लज़ीना, इजाज़त दिए गए हैं वो लोग जिनके साथ लड़ाई की जाए, लेकिन इसमें भी ज्याती ना करना, औरतों पे हाथ ना उठाना, बूढ़ों पे हाथ ना उठाना, जो घरों में बैठे हुए नॉन मुस्लिम उनको कुछ नहीं कहना, किसी के जानवरों को नहीं कहना। हाँ, जो मैदान जंग में हथियार लेके आ गए आप उनसे मार तो नहीं खानी, फिर उनका मुकाबला करो। तो लिहाजा ऐसे वक्त में फिर कुछ ऐसे हालात पेश आए जिसके वजह से मुसलमानों को आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा बुरे नाम दिए जाते हैं। लेकिन कुछ मरहलों में ये लड़ाई की इजाज़त हुई थी। पहला मरहला क्या था कि मुशरिकीन ने कुरैश को बरसरे जंग समझना, क्योंकि उन्होंने ही जुल्म का आगाज़ किया था। बस मुसलमानों को हक पहुंचता था कि इनसे लड़ाई लड़े और इनका माल जब्त करें, जबकि दूसरे मुशरिकीन अरब के साथ ये सूरत हाल ना थी। देखिए कि मुसलमान जब हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए थे ना, तो सबके घर बार जायदादें वहीं थी। जो मुसलमान हिजरत करके जाता ना, तो मुशरिकीन मक्का उनकी ज़मीनों, उनके मालों पे कब्ज़ा कर लेते। ये बात समझ लें, क्योंकि आगे गज़वे बदर आने वाली है और फिर जंगों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो अल्लाह के नबी के गज़वात के ऊपर एक नज़र डालना हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा कि किस तरह आपने लोगों को इन सारी चीज़ों पर रखा कि जंग कब करनी है, कब नहीं करनी। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालात कुछ इस किस्म के थे कि जब कुरैश के साथ लड़ाई करना इसकी इजाज़त थी, और उसके बहुत सारे रीजंस थे, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने मुसलमानों को निकाला। देखिए ना, आप किसी की वजह से मुल्क बदर हो जाएं तो आप कभी उसको माफ़ करें? कोई आपको पाकिस्तान से निकलवा दे, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की ख़त्म कर दे, और अब आप पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, आप उस बंदे के साथ क्या करेंगे? तारीफ़ करेंगे, वो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तो लिहाजा उनके तो जुर्म की दास्तानें उनके अपने हाथों में लिखी हुई थी। फिर एक और चीज़ क्या थी कि मुशरिकीन अरब में जो कुरैश का साथ दें और इनसे इत्तेहाद करें, या गैर कुरैश में से जो बजाते खुद मुसलमानों पर ज़्यादती और जुल्म करें, इन सबसे लड़ना। तीसरा, जिन यहूद ने नबी सल्लम के साथ अहद पैमान कर रखा है, अगर वो ख़यानत करे और मुशरिकीन का साथ दे, तो इनके साथ अहद बशर्ते इस तवारी को तोड़ देना। यानी यहूद अगर अपने उस वादे को पूरा ना करें जो मीसा के मदीना में हो गया, फिर यहूद से भी लड़ाई होगी। चौथा मरहला क्या था किताल में, कि जो अहले किताब मसलन नसारा मुसलमानों से दुश्मनी का आगाज़ करें तो इनसे भी लड़ना, यहाँ तक कि वो छोटे बनकर अपने हाथ से जिज़िया दें। और पांचवें हालात वो थे जो मुशरिक यहूदी या नसरानी वगैरह इस्लाम में दाखिल हो जाए, इससे हाथ रोक लेना, इसकी जान माल को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिवाय सूरत के कि वो खुद शरई तौर पर इसका सज़ावार हो और इसका हिसाब अल्लाह पर होगा। तो ये पांच मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ डीलिंग थी नबी सल्लम की जंगों के सिलसिले में। इन सारों के इर्द गिर्द ही अल्लाह के नबी की सारी जंगें घूमती हैं। अब आगे हम थोड़ा से आपकी गजवात और सराया को देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम ये सारे काम करते कराते रहे। तो आप यहाँ से अपने जहन को क्लियर कर लें, बल्कि आप सब जो वेस्ट में रहते हैं आपके लिए ये टॉपिक बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो मैं पहले तो आपको ये नसीहत करूं कि कभी किसी से बहस ना करें जब तक आपको खुद पूरा इल्म ना हो। कभी कोई आपसे अल्लाह के नबी की ज़ात के बारे में भी कोई बात कर देना, तो आप पहले उससे ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करें। जब तक लोगों को अल्लाह नहीं समझ आएगा, रसूल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा हमारे अपने शरह सदर के लिए होना चाहिए कि क्या वाकई अल्लाह के नबी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और इतनी जंगें की। तो पहली बात देखिए कि 13 साल तक नबी सल्लम और मुसलमान एहतियात का दामन पकड़े हुए थे, बहुत केयरफुल थे। उन्होंने पहरे और हथियारों के साथ सोने का इंतज़ाम तो कर लिया, खुद पहल नहीं की। जब किताल की इजाज़त नाजिल हुई तो नबी सल्लम ने फौजी तलाया गर्दी का इंतज़ाम किया। ये क्या होता है? अपने ट्रूप्स भेजने, ग्रुप, जैसे हर मुल्क ने अपने दिफा के लिए कोई ग्रुप रखा होता है तो उसको जाके इर्द गिर्द सरहदों पर रखना। आज भी आप सुनते हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर फौज फिरती है, पाकिस्तानी बॉर्डर पे पाकिस्तान की फौज होती है और इंडियन बॉर्डर पे इंडियन होती है, और दिन में कई बार उनकी तब्दीली भी होती है, फिर कभी वो परेड भी करते हैं। आप में से किसी को वाहगा बॉर्डर जाके देखने का इत्तेफाक हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये मंजर है, मैं खुद देख चुकी हूँ एक मौके पे। और दोनों फौजी आमने सामने और दोस्तों ने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, वो सारा दिन खड़े रहते हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन हर एक को पता है कि हम अपने मुल्क की हद में खड़े हैं। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता सहाबा के कुछ ग्रुप्स बनाए कि जो मदीना के इर्द गिर्द इस तरह से दिफा किया करते थे, किसी एक सहाबी को उनका लीडर बना देते। ऐसी जंग को सरिया कहते थे। सरिया क्या जंग होती है? कि जिसमें अल्लाह के नबी खुद नहीं गए, या तो किसी काफले का रास्ता रोकना होता था या किसी जंग को रोकना। इसके मुख्तलिफ मकासिद होते थे, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स, किसी में जाके सिर्फ डिफेंसिव होके खड़े होना होता था और किसी में ओफेंसिव होकर जाके दुश्मन से माले गनीमत भी लाना होता था। कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जंगों में जाते थे, और बहुत थोड़ी जंगें हैं जो हमें दिखती हैं, चंद बड़ी जंगों के सिवा, कि जिसमें अल्लाह के नबी खुद गए हों। तो ऐसी जंग जिसमें अल्लाह के नबी खुद चले जाएँ, उस जंग को गजवा कहते हैं। गजवा, इसी की जमा गजवात है। मकासद क्या थे? क्योंकि किसी काम का मकसद पता हो तो करना आसान होता है। पहला मकसद क्या था? कि दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगाना, यानी दुश्मन की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना और मदीना के चारों तरफ को महफूज रखना। ऐसा नहीं होगा तो दुश्मन किसी वक्त भी धोखे से पड़ेगा। क्या बताइए, आज आप दुनिया का कोई मुल्क जानते हैं जिसकी आर्मी ना हो, फौज ना हो? और कभी आपने सुना कि हाय अमेरिकन बॉर्डर्स पे अमेरिकन फौज फिर रही थी? कितने ये जालिम है, कितनी बेवकूफ़ी की बात होगी कि अगर हम ये कहें कि किसी का मुल्क तो है लेकिन उसको उसकी बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। हम घर बनाते हैं और हमें चार दीवारियां बनाते हैं, दरवाजे नहीं लगाने चाहिए, बेवकूफ़ी है ना? हर एक का हक है, मेरा हक है कि मैं अपने घर की हिफाजत करूं, तो एक मुसलमान हुक्मरान का फर्ज होता है कि वो मुल्क की हिफाजत करे, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं होती। दूसरा मकसद क्या था? कुरैश के काफिलों से छेड़खानी करके इन पर दबाव डालना, ताकि इन्हें अपनी तिजारत और जान माल के लिए खतरे का एहसास हो जाए। इसके बाद या तो वो अपनी हिमाकत से बाज आकर मुसलमानों से सुलह कर लें और इनको इस्लाम को फैलाने और इस पर अमल करने के लिए आज़ाद छोड़ दें। और यही मुसलमानों की इंतहाई आरजू थी, या जंग और किताल का रास्ता अपनाएं। और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में सबसे पहले अपनी तिजारत का रास्ता खो देंगे, क्योंकि वो मदीना के इतराफ से गुजरता था, और दूसरे दर्जे पर अल्लाह के हुक्म और इसकी मदद से अपने शर और जुल्म का बदला पाया जाए। इसकी तरफ अल्लाह ताला के कलाम में कई बार इशारा है। समझ लें इसको अपने लफ्ज़ों में। पहला मकसद समझ आ गया, बॉर्डर्स की हिफाजत। दूसरा क्या था? कि मुसलमान काफिरों के साथ इंटरेक्ट करें। ये जो छेड़खानी है ना, इसके अंदर ये कि जस्ट किसी से राह रस्म बढ़ाना, सुनाओ भाई तुम इधर कैसे आए, क्या हुए, क्यों हुए, चलाओ बातों में इस्लाम की बातें शुरू कर दें। जब बात शुरू होती थी ना, तो फिर वो इस्लाम की बात होती थी और उसके नतीजे में दावत होती थी। और अगर ऐसी हरकत में पता चल जाता कि कहीं कोई ऐसा माल है जो खैर तो मुसलमानों का ही लेकिन इन्होंने कब्जे में लिया हुआ है, तो उसके एंड पे फिर वो मुसलमानों को भी मिल सकता था। तीसरा एक मकसद क्या था कि दूसरे कबाइल के साथ दोस्ती और तआवुन और जंग न करने का मुआहदा करना, कि मुसलमान अमन के साथ रहते हैं और दोस्ती की बुनियाद पर रहते हैं। चौथा, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और कौलन और अमलन इस्लाम की दावत देना। बहरहाल ये चंद मकासद थे इन छोटी छोटी जंगों के, और ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थी। आपको पता है कि उस तरफ से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा थी, वो आ आ के इस तरह से सहाबा को एक्सप्लॉयट कर रहे थे कि धमकियां देते थे, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक कहते हैं कि उन्होंने एक शख्स से सुना जो कि नबी सल्लम के साथियों में से थे, कि कुरैश के काफिलों ने अब्दुल्ला बिन उबई और इनके साथियों को जो बुत परस्ती में इसके शरीक थे और औस और खजरत से ताल्लुक़ रखते थे लिखा, और इस ज़माने में अल्लाह के नबी मदीना में क्याम पजीर थे। यानी ये वाक़या गज़वे बदर से पहले का। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था, थोड़ी सी इसकी भी कहानी सुन लीजिए। अभी शुरू में आपको बताया कि मदीना में दो कबाइल थे कुफ़ार के, औस और खजरज। ये एक बाप के दो बेटे थे पुराने दौर में, उनकी नस्ल से जो दो कौमें चली, एक औस और एक को खजरज कहा जाने लगा। खजरज अमीर लोग थे, ताकतवर थे, आप कह रहे ज़रा वडेरे टाइप, जिनके पास अथॉरिटी है। और जो औस थे ना, ये बेचारे कमी कमीन जिमीदार, थोड़े छोटे दर्जे के लोग थे। नतीजा क्या होता कि खजरज वाले अपने लिए कुछ और रूल्स बनाते, अपनी जुल्म, जिसकी बेटी को चाह ले आए, जिसका घर जाके उजाड़ दिया, जिसकी चीज़ को पकड़ा तो अपना कब्जा समझा। औस बेचारे दबे हुए लोग थे, नतीजा क्या था, जहर जुल्म था, तो जहाँ जुल्म होगा वहाँ लड़ाई होगी। इन दोनों कबीलों के बीच में एक जंग शुरू हुई, जिस जंग का नाम जंगे बुआस, बा आइन अलिफ सा। कितनी कु देर जंग जारी रही होगी पता है आपको? 200 साल, 2 सदियां तक ये जंग चलती रही, नस्लों की नस्लें इनकी ख़त्म हो गई इसमें। सिर्फ इस बात पे भी ये लोग लड़ते थे कि मेरे खेत के दरख्त से चिड़िया उड़कर तुम्हारे खेत के दरख्त पे क्यों बैठ गई, इस पे लड़ने लग जाते थे, लड़ाके लोग थे। आखिर थक गए, फिर हर कौम में आपको ना कुछ ज़रा पीस मेकर्स होते हैं, डिफेंडर, डिफेंसिव, ख़त्म, नो मोर जंग, वी डोंट वॉन्ट वॉर। क्या करें, कहने लगे तुम दोनों कबीले दोस्ती करो, दोस्ती करेंगे तो दोनों मिलके एक शख्स को लीडर बना ले। तो आपको पता है कि किसका लीडर बनना था फिर? खजरज का, क्योंकि अमीर कबीला था, ज़रा बड़े थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई खजरज से था, उसको लीडर चूज़ कर लिया गया कि ठीक है आज के बाद ये हमारा लीडर है। सब बात हो गई फाइनल। अब इसकी रस्म चलने वाली थी, जैसे फंक्शन की तैयारियां हो रही थी, जिसमें इसको ताज पहनाया जाना था उस दौर के रिवाज के मुताबिक कि ये हमारा सरदार है। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी सल्लम मदीना में आ गए, तलाव बद्रु अलैना। जब अल्लाह के नबी आए तो लोगों की सारी नज़रें आपके ऊपर आ गईं, और आपको नबी सल्लम की सूरत और किरदार में लगा कि ये है शख्स जो हमें पीस दे सकता है, इसके पास जो कवानीन है, जो असूल है, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये हमें पीस देगा। चुनाच अब्दुल्ला बिन उबई को छोड़कर अल्लाह के नबी से लोग मिल गए। ये था वो ग्रज और गुस्सा जिसकी वजह से अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में नबी सल्लम से नफरत थी, आर थी। तकरीबन 1 साल तक ये कुफर पे रहा, और अभी आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह गज़वे बदर से पहले तक ये कुफर पे था। इसके पास मुशरिकीन खबरें भेजते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये दिल में गुस्सा रखता है, तो मक्का वाले इस शख्स को आके कहा करते थे कि तुम इन लोगों को निकालो मदीना से। कहने लगे तुमने हमारे साथी मोहम्मद को जगह दी है, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि तुम इनसे लड़ो या अपनी ज़मीन से निकाल दो, वरना हम सब मिलकर तुम पे हमला कर देंगे। एक्सप्लॉयटेशन, बाहर से धमकियाँ, जैसे आज भी आप सुनते हैं फलां मुल्क जंग की धमकियाँ दे रहा है फलां को, और तुम में से जो लोग लड़ सकने वाले हो इन सबको कत्ल कर दें और तुम्हारी औरतों को हम अपने साथ ले लेंगे। बहरहाल ये खत जब अब्दुल्ला बिन उबई को मिला और इसके साथियों को जो बुत परस्त थे, तो वो सब अल्लाह के नबी से लड़ने के लिए जमा हो गए। जब अल्लाह के नबी को पता चला, आप सब उनके पास गए, उनको समझाया, कहा नहीं, कुरैश ने तुम्हें जो बातें कही हैं वो दुरुस्त नहीं है, तुम अपना नुकसान करोगे अगर हमसे लड़ाई करोगे, लिहाजा तुम्हें लड़ाई की सूरत में अपने भाइयों और अपने बेटों से भी लड़ना पड़ेगा, और तुम जंग का इरादा ख़त्म कर दो। इस बात पर फिर ये लोग खुद ही डर गए और कहा कि ठीक है छोड़ देते हैं। कुरैश को पता चला कि नहीं, अब्दुल्ला बिन उबई के साथ बात नहीं बन सकी, तो फिर उन्होंने दूसरा हदफ बनाया यहूद को। यहूद के पास अपने लोगों को भेजा, कहा देखो तुम्हारे पास इतना असलहा है, दौलत है, बड़े बड़े घर हैं, क्या तुम मोहम्मद और उसके साथियों से लड़ नहीं सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और देखो अगर तुम उनसे ना लड़े ना तो हम तुम्हारे बेटों को और तुम्हें कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों को हम लेके चले जाएंगे। अब इस खत को सुनकर बनू नज़ीर के जो यहूद थे और इसी तरह कुछ और, उन्होंने सोचा कि वाकई ये ठीक है, लिहाजा अब वो मुआहदा रास्ते में रुकावट था जो अल्लाह के नबी उनसे कर चुके थे, तो लिहाजा इन कबीलों ने फिर अल्लाह के नबी को धोखा देने और वादा तोड़ने की कोशिश की कि हम आपके साथ अब लड़ेंगे। अल्लाह के नबी को बात पता चल गई, आपने 30 लोग लिए और इनकी तरफ निकले और उधर से 30 आलिम निकल कर बीच में मिले। अल्लाह के नबी का देखिए फैसला कैसा प्यारा है, कहा कि हमारे साथ 30 लोग और 30 लोग तुम्हारे साथ कहीं बीच में बैठेंगे, तुम अपने इल्म वालों को लाओ हम बैठेंगे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे तुम हमारी सुनना, जिसकी बात सच्ची होगी उसको मान लेंगे। बताइए इससे भी ज्यादा कोई सुलह वाला लीडर हो सकता है? जिनको लड़ने की आदत होती है उनके तो हाथ में खारिश हो रही होती है। और इस तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तजवीज़ सहाबा के सामने भी हुई। जब दूसरा दिन हुआ तो आप अपने साथ लश्कर लेकर उनके पास पहुँचे, उनसे फरमाया कि अल्लाह की कसम मुझे तुम पर इस वक्त तक इत्मीनान ना होगा जब तक तुम मुझसे एक अहद और इकरार ना कर लो। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी ने इनसे दिन भर जंग की। फिर दूसरे दिन लश्कर लेकर दूसरे कबीले यानी बनू कुरैज़ा के पास गए यहूद के, और बनू नज़ीर को छोड़ दिया और इनसे कहा कि तुम अहद को वापस करो। उन्होंने माहदा कर लिया कि हम जंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर गए। यानी आपको सिर्फ हिस्ट्री समझ आ रही है कि यहूद ने कितनी दफ़ा अल्लाह के नबी से वादे किए फिर तोड़े, किए फिर तोड़े। फिर अल्लाह के नबी दूसरे दिन बनी नज़ीर के पास गए, उनसे लड़े यहाँ तक कि जिला वतनी पर राजी हो गए। फिर वो जिला वतन हुए इस हाल में कि जो कुछ इनके ऊँटों से माल और असबाब, अपने घरों के दरवाजे और लकड़ियाँ उठा सके थे उठा लिए, और इनके खजूरों के बाग अल्लाह के नबी को मिले। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर यह आपको अपनी तरफ से अता किए थे और कहा कि काफिरों के माल में अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो हिस्सा दिया, जिस पे हालांकि मुसलमानों को कोई लड़ने के लिए घोड़े भी नहीं दौड़ाने पड़े। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको खुलासा हदीस का सुना रही हूँ। अबू दाऊद की रिवायत है 3004 नंबर की, कि आपके जहन में ये पॉइंट क्लियर हो कि अल्लाह के नबी लड़ने भिड़ने वाले नहीं थे, खुद लोगों ने पहल की आपको सताया तो उसके नतीजे में फिर आपको निकलना पड़ा, खुद भी निकले और दूसरों को भी निकालना पड़ा। हम जरा आज के भी अपने ईमान को देख लें, हमारा ईमान कैसा, घर बैठे होलते हैं। याद रखिए ये जो मुसलमानों के अंदर किरदार बन गया ना, हर वक्त ही खौफजदा रहना, पता नहीं किस बात का गिल्टी कॉन्शियस है, ये ना करना पता चल जाएगा, ये ना करना मुसलमान हो, कपड़े ये ना पहनो, हाल हुलिया बदल लो, एयरपोर्ट्स पे जा रहे हो ये कर लो वो कर लो, तो आप मैं इस गिल्ट से निकल आए। जो दबेगा उसको दबाया जाएगा, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का। अल्लाह के नबी ने इतनी खूबसूरत दुआएं दी हैं, पढ़ो दुश्मनों के खौफ से, जालिम हुक्मरान का खौफ है पढ़ो, लेकिन हम मुसलमानों को अपने दीन पर प्राउड होना चाहिए। एक बंदा उसको बिल्कुल आधे जिस्म के साथ बाहर निकलते हुए कुछ हया नहीं आती कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अगर आप सर से पांव तक ओढ़ के जाते हैं तो आपको किस बात की शर्म है। ये सिर्फ एक माइंड सेटअप है, परसेप्शन है, इसको आज बदलने की ज़रूरत है।